Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Ishavasya Upanishad, presented by Swami Sri Advaitananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Sanandamanandavane vasantam anandakandam atapapavrindam Varanasi Nath Manathanatham Sri Vishwanatham Sharanam Prapadye Sri Vishwanatham Sharanam Prapadye. Ishavasyamidam sarvam yatkincha jagatyam jagat tena tyaktena bhunjitha ma grudah kasya svidhanam. Ye यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद का कान्व शाखा का ये मंत्र है. इसमें 40 अध्याय आते हैं. यजुर्वेद में दो शाखाएं चलती है, कन्व शाखा और माध्यन्दिन शाखा. उसमें कन्व शाखा में 40 अध्याय है, 40 अध्याय का उसमें से 39 अध्याय में वेदों ने कर्म का और उपासना का प्रतिपादन किया है. और ये 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद के नाम से जाना जाता है. इसके पूर्व में कर्म और उपासना इसलिए बताई जाती है क्योंकि ज्ञान का या ईश्वर साक्षात्कार का अधिकारी बनने के लिए कर्म के द्वारा मल की शुद्धि, क्योंकि हमारा अंतकरण 3 दोषों से दूषित है. हमारे अंतकरण में 3 दोष माया के ही ये 3 दोष है और इन दोषों से जो ज्ञान का साधन अंतकरण या बुद्धि इन दोषों से दूषित है. इसलिए हमें सत्य का बोध नहीं होता है, असत्य को ही हम सत्य मान बैठते हैं. ये विपरीत भावना हमारी जो बन रही है इसका कारण है ये दोष. जैसा कोई नेत्र में तिमिर नाम का दोष होता है तो एक वस्तु की दो दो वस्तु दिखाई देती है। मोतिया नाम का दोष आता है आंखों में तो दिखना ही बंद हो जाता है, या दिखता है तो धुंधला धुंधला दिखता है। इसी प्रकार से हमारे अंतकरण में भी ये दोष आए भी है। इन दोषों की निवृत्ति करने के बिना, अंतकरण शुद्ध होने के बिना सत्य का बोध अंतकरण में नहीं होता है। सत्य है परंतु सत्य दिखता नहीं है, सत्य अनुभूत नहीं हो रहा है, और हम उस सत्य का अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि सभी जीवों के लिए अत्यंत प्रिय सत्य ही होता है। झूठ किसी को भी प्रिय नहीं होता है, क्योंकि सत्य ही हमारा जीवन है, सत्य ही हमारा स्वरूप है, और हम सत्य ही हैं। परंतु फिर भी हम अपने को जन्मने वाले मरने वाले मान रहे हैं, सुखी दुखी मान रहे हैं, अनेक प्रकार के दुखों से दुखी मान रहे हैं, अज्ञान के कारण जड़ता मंदता आदि हमारे अंदर अनुभूत हो रही है। देखो, इनके जो कारण हैं, इन कारण को जब तक दूर नहीं किया जा सकता है तब तक हमें सत्य का बोध नहीं होता है। हमारे अलावा दूसरी कोई वस्तु सत्य नहीं है, परंतु हम अपने अलावा दूसरी वस्तु को सत्य मान बैठते हैं। इसका कारण यह है कि ये दोष, इसलिए अंतकरण को शुद्ध करने के लिए हमारे वेदों ने कर्म बताया है। कर्म से मल नाम का दोष दूर हो जाता है, उपासना से विक्षेप नाम का दोष दूर होता है, और ज्ञान से आवरण नाम का दोष दूर होता है, तब हमें सत्य का बोध होता है। इसलिए ये तीन कांड बताए हैं। सत्य नहीं है ये बात नहीं है, या सत्य का ज्ञान नहीं है ये बात भी नहीं है, परंतु ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान इन दोषों से आच्छादित है, आवृत्त है। ये जब तक अंतकरण अनावरण नहीं होगा, अर्थात निर्दुष्ट नहीं होगा, तब तक सत्य को हम अनुभूत नहीं कर सकते हैं। वेदांत शास्त्र या वेद किसी वस्तु को आपको प्राप्त नहीं कराते हैं। शास्त्राध्ययन करने का अर्थ ये नहीं होता है कि वेदों को पढ़ने से या उपनिषद को पढ़ने से हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा के प्राप्ति के साधन नहीं है, ये ध्यान रखना। ना वेद परमात्मा की प्राप्ति के साधन है, ना शास्त्र परमात्मा की प्राप्ति के साधन है, क्योंकि परमात्मा तो अप्राप्त कभी है ही नहीं। ये अज्ञानी की समझ है कि ऐसा कर्म करने से हमें परमात्मा मिलेगा, वैसा कर्म करने से हमें परमात्मा मिलेगा, ये अज्ञानियों की मान्यता है। नहीं, न कर्म प्राप्य परमात्मा है, न उपासना प्राप्य परमात्मा है, न ज्ञान प्राप्य परमात्मा है। तो ये साधन फिर जो वेदों ने बताया ये तो निरर्थक हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे? फिर जब परमात्मा ही नहीं मिलेगा, देखो आप लोगों की ये कल्पना होती है कि ये कर्म करने से हम सुखी हो जाएंगे, है ना? ऐसा जब करने से हम सुखी हो जाएंगे, या ये हम जानने से सुखी हो जाएंगे, है ना? परंतु ये ध्यान रखो, कोई भी कर्म करने से कर्म का फल सुख नहीं है, कर्म का फल आनंद नहीं है, ना जप का फल सुख है, ना ज्ञान का फल सुख है, ना आनंद है। सुख में और तुम्हारे बोध में जो प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध को दूर करने के लिए इनकी आवश्यकता है, सुख के लिए नहीं। सुखी तो तुम हो ही, आनंदित तो तुम हो ही, पूर्ण तो तुम हो ही, अपूर्ण कभी हो ही नहीं, अमृत तो तुम हो ही। अमृतस्य पुत्र वयम्, और भगवान खुद भी कहते हैं कि मम विवांसो जीव लोके, श्रुति भी कहती है तत्सृष्ट्वा तदिवानुप्राविशत्। परमात्मा ने इसको निर्माण किया और परमात्मा इसमें खुद प्रविष्ट हुआ। अनेक शास्त्रों के प्रमाण हैं, श्रुतियों के प्रमाण हैं, पुराणों के भी प्रमाण हैं, स्मृतिकारों के भी प्रमाण हैं, परंतु उस परमात्मा के बोध में, अनुभूति में जो बीच में जो प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध को दूर करने के लिए इन साधनों की आवश्यकता है। ये साधन नहीं करेंगे तो प्रतिबंध दूर नहीं होगा, और प्रतिबंध दूर नहीं होगा तो आपको कभी भी बोध नहीं होगा। ये दूर जब हो जाते हैं तब अपना ही बोध होता है, तो कैसा होता है? बोध अभी नहीं है, ये बात नहीं है, अभी भी है, परंतु एक परिच्छिन्न बोध है, परिच्छिन्न बोध, सामान्य बोध है। कल मैंने बता दिया था कि सामान्य बोध है, मैं हूं ये सबको मालूम है, परंतु मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान नहीं है, ये अनुभूति नहीं है। मैं मनुष्य हूं, मैं कर्ता भोक्ता हूं, मैं जन्मने वाला मरने वाला हूं, मैं जीव हूं, अमुक हूं तमुक हूं आदि आदि, तो तुम्हें ज्ञान है, ये ज्ञान है, परंतु ये सामान्य ज्ञान है, और सामान्य ज्ञान में विशेष अज्ञान होता है, और विशेष अज्ञान का मतलब है ये तीन दोष। अविद्या क्या है? इन दोषों का नाम ही अविद्या है, इन तीन दोषों का मतलब ही होता है अज्ञानता। तो इसलिए इन अज्ञानता को दूर करने के लिए वेदों की जरूरत है, शास्त्रों की जरूरत है। महापुरुष भी क्या करते हैं? कोई संत से तुम्हें परमात्मा मिलता नहीं है, संत नहीं तुम्हें परमात्मा को मिलाते हैं, क्योंकि तुम परमात्मा नहीं हो तब तो परमात्मा को मिलाया जाए। संत ये बोध करा देते हैं, क्या करा देते हैं?
बोध।
अरे परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम ही परमात्मा हो। भटकते कहां जा रहे हो? परंतु हमें ये अनुभव नहीं होता, इसलिए वो शास्त्र बताते हैं आपको, शासनात् शास्त्र, आपको शासित करते हैं। शासित का मतलब शुद्ध करते हैं, क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। आपको ही अपना ही बोध करा देते हैं, परंतु किस रूप में? ब्रह्म रूप में, मनुष्य रूप में नहीं, जीव रूप में नहीं, कर्ता भोक्ता रूप में नहीं, आने वाला जाने वाला रूप में नहीं, स्वर्ग नरक में जाने वाले के रूप में नहीं, ये सब द्वंद्वों की समाप्ति करके, द्वैत की समाप्ति करके तुम्हें अपना अद्वैत बोध करा देते हैं। इसके लिए इन शास्त्रों की और महापुरुषों की आवश्यकता है। मैंने कल बताया था तीन कृपा है ना, ईश्वर कृपा, शास्त्र या गुरु कृपा और तीसरी आत्म कृपा। समझना, ये आत्म कृपा क्या है? आत्म कृपा है आपके अंदर अपने को ही जानने से, जानने की उत्कृष्ट जिज्ञासा। ये जिज्ञासा जब होती है तब आपके अंदर पुरुषार्थ का निर्माण होता है, और जिस जीव के जीवन में पुरुषार्थ निर्माण हो गया है उसको समझना आत्मकृपा। कर्म निर्माण होना अलग बात है। क्या कर्म तो स्वाभाविक ही, प्राकृत ही आपके अंदर है ही, पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ को निर्माण कराया जाता है, और जो जीव इस पुरुषार्थ को निर्माण करता है उस पुरुषार्थ का नाम है आत्मकृपा। दूसरे के द्वारा नहीं, ये तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ निर्माण होगा तो दूसरे के द्वारा नहीं हो सकता है। ना शास्त्र इस पुरुषार्थ को निर्माण कर सकता है, ना कोई गुरु निर्माण कर सकता है, ना कोई संत महापुरुष निर्माण कर सकते हैं। तुम अपने को ही अपने में ये निर्माण कर सकते, और जब ये निर्माण करते हैं तब तुम्हारे अंदर, इसलिए तो मोक्ष पुरुषार्थ बताया। क्या बताया है? मुमुक्षुता आती है, मुमुक्षुता तुम्हारे अंदर आना आत्मकृपा है। समझे ना? जिज्ञासा आना आत्मकृपा नहीं है, ये जीव कृपा है। क्या? जिज्ञासा निर्माण करना ये जीव की कृपा है। जीव का जब शुद्ध प्रारब्ध निर्माण होता है तो जिज्ञासा निर्माण हो सकती है। क्या? क्योंकि हमारे प्रारब्ध में, प्रारब्ध हमारा जो बना है वो गुणों के आधार से बना हुआ है ना? सत्व रजतम, ये तीन प्रकार से हमारे अंदर जो गुण होते हैं उन गुणों से ही कर्म होता है, और उन कर्मों से ही संस्कार निर्माण होते हैं, और उन संस्कारों से ही प्रारब्ध बनता है। क्या बनता है? प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध के ही अनुसार भोग होता है, सुख का दुख का। वो क्या है? सुख या दुख? सुख का भोग होगा या दुख का भोग होगा, ये प्रारब्ध से होता है। उसमें तुम्हारा सत्व गुण सात्विक प्रारब्ध निर्माण हो गया तो हो आपके अंदर इच्छा निर्माण होती है। क्या? इच्छा निर्माण होती, इच्छा। इच्छा जिज्ञासा नहीं है, ये सामान्य है। समझ? इच्छा तो सभी जीवों के अंदर है, ऐसा कोई जीव नहीं कि उसके अंदर इच्छा नहीं है, है ना? इच्छा मन में होती है, ध्यान रखो। इच्छा किस में होती है? ये मन का धर्म है। इच्छा के कारण ही इसको अंतकरण को मन कहा है। पर जिज्ञासा कहाँ होती है? जिज्ञासा मन में नहीं होती, जिज्ञासा बुद्धि में होती है। क्या? ये भेद समझ लेना। जिज्ञासा बुद्धि में होती है, सात्विक इच्छा यदि मन में आ गई और वो भी प्रबल। क्या? प्रबल। प्रबल का मतलब तीव्र, तीव्र, समझना। तब वही इच्छा बुद्धिस्त होती है, और बुद्धि में ज्ञान की जिज्ञासा होती है। किसकी?
ज्ञान,
ज्ञान की जिज्ञासा होती है। परमात्मा को जानने की जो हो उत्कट इच्छा है उसका नाम जिज्ञासा है। देखो जिज्ञासा में भी दो वस्तु है, क्या? जैसा एक बच्चा पूछता है, आप भगवान का वर्णन करते हैं तो बच्चा पूछता है, मां जो तो आप भगवान की जो बात करते हो भगवान कहां है, है कि नहीं? तो उसको भी भगवान को जानने की इच्छा हुई कि नहीं है? तो मां क्या करती है, मां क्या करती है, कोई फोटो लेती है और फोटो को दिखाती है, देखो ये भगवान है, है ना? सामान्य इच्छा का फल फोटो दर्शन, फोटो का ज्ञान, फोटो
दिखा,
उस फोटो को ही परमात्मा कहा जाकर कह करके उसको बच्चे को बोध कराया जाता है। जो बच्चे के अंदर बोध होता है तो किसका होता है, परमात्मा का ही होता है कि नहीं होता है? बोध ही है ये, कोई मतलब गलत नहीं है परंतु सत्य भी नहीं है, क्या? गलत भी नहीं है तो सत्य भी नहीं है। तो ऐसे परमात्मा को देखने की इच्छा ये अज्ञानियों के अंदर होती है। तो ऐसा बालक, इसलिए बालक का उदाहरण दिया, उस बालक के अंदर जो जिज्ञासा हो गई है जैसा ध्रुव के अंदर हो गई थी कि नहीं हुई थी? कहा कि ध्रुव का जब अपमान हुआ, रोता हुआ मां के पास आया, मां को मां ने पूछा तो मां ने बता दिया कि भाई तुम ऐसा सुख चाहते हो अपने पिता के गोद का और तुम सब संपत्ति चाहते हो तो तुम परमात्मा के पास जाओ, परमात्मा के गोद में बैठो, परमात्मा का राज्य प्राप्त करो। तो ध्रुव ने भी पूछा था, उस समय 5-7 साल की उम्र होगी, उसने पूछा कि वो परमात्मा कहां है? कहा कि वो तो जंगल में है। तो जंगल में चल पड़ा, परंतु जंगल के परमात्मा को प्राप्त मां के वचन से किया कि नारद के वचन से किया? नारद के वचन से। नारद ने परमात्मा को मिलाया, मां ने परमात्मा का ज्ञान तो करा दिया, परमात्मा कहां रहता है? जंगल में रहता है। अब परमात्मा जंगल में नहीं है ऐसी बात है क्या? परमात्मा जंगल में भी है परंतु परिच्छिन्न रूप से, सामान्य रूप से, है ना? सामान्य रूप से। नारद जी ने जो परमात्मा का जो बोध कराया ध्रुव को, या दर्शन कराया, साक्षात्कार कराया, तो वो कैसा कराया? अपरिच्छिन्न रूप से। तो एक सामान्य जिज्ञासा का फल है सामान्य ज्ञान, और विशेष जिज्ञासा का फल है विशेष ज्ञान, अर्थात अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, क्या? अपरोक्ष ज्ञान, परमात्मा की अनुभूति अंदर करना। और जब परमात्मा किस रूप से, जैसा आप भी सुनते हैं और आग बंद करते हो, है ना? मंदिर में जाते हैं, परमा भगवान का दर्शन करते, हाथ जोड़ते, बहुत देर तक देखते हैं, और देखने के बाद क्या करते हैं? आग बंद करते हैं कि नहीं? आग बंद करके आप किसको देख रहे हैं? आग खोल करके भी तो उसी परमात्मा को देख रहे थे, और आग बंद करके भी किसको देख रहे हैं? उसी परमात्मा को देख रहे हैं। देख रहे हैं कि समझ रहे हैं? देख भी रहे और समझ भी रहे, परंतु कैसा समझ रहे? देख भी परिच्छिन्न रूप से, एक रूप से देख रहे हैं, है ना, और उतने को ही तुम परमात्मा समझ रहे हैं, अर्थात परिच्छिन्न परमात्मा का बोध हो रहा है, समझना, व्यापक रूप से नहीं, निराकार रूप से नहीं, अपरिच्छिन्न रूप से नहीं, अव्यय रूप से नहीं, परंतु यहां श्रुति शास्त्र परमात्मा को वो क्या कहती है, परमात्मा कैसा है, शुद्ध है, अपापविद्ध है, अपरिच्छिन्न है, अव्यय है, अविनाशी है, आदि आदि, आनंद रूप है। वो आनंद तो कैसा है, जब तक देख रहे तभी तक है, और देखना बंद हो गया तो आनंद भी नहीं। तो ये जो बोध है ये आचार्य कराते हैं, गुरु कराते हैं शास्त्र के माध्यम से। शास्त्र एक साधन है, क्या है, शास्त्र एक साधन है। किसका साधन है, मैंने पहले अभी बताया, ये ज्ञान का साधन नहीं है, दोष निवृत्ति का साधन है। शास्त्र क्यों बताते हैं आचार्य, शास्त्र का बोध क्यों कराते हैं, क्योंकि उसके बिना, शास्त्र के बिना आपका अंतकरण शुद्ध नहीं हो सकता है, ये तीन दोष दूर नहीं हो सकते हैं, इसके लिए शास्त्र की अत्यंत आवश्यकता है। और ये शास्त्र जब ये हो जाता है, और जब आपने अंदर जब मुमुक्षुता निर्माण होती है पुरुषार्थ से, समझे ना, ये पुरुषार्थ ही मुमुक्षुता, क्या पुरुषार्थ है, ये मुमुक्षुता निर्माण करना पुरुषार्थ है। इसलिए परमात्मा प्राप्ति में कर्म साध्य परमात्मा नहीं है, पुरुषार्थ साध्य है, परमार्थ में पुरुषार्थ की महत्ता है, कर्म की महत्ता नहीं है, संसार में कर्म की महत्ता है, और कर्म के द्वारा जो भी प्राप्त होगा वो संसार होगा, और जो संसार होगा वो नाशवान होगा। कर्म के द्वारा नाशवान वस्तु की ही प्राप्ति होती है, चाहे सुख के रूप में हो, चाहे और किसी भी रूप में हो, वो अविनाशिनी है, परंतु पुरुषार्थ से जो साध्य होता है वो अविनाशी वस्तु की प्राप्ति होती है। इसलिए पुरुषार्थ, पुरुषार्थी बनने का प्रयत्न करना चाहिए, और इन पुरुषार्थ में चार पुरुषार्थ शास्त्रों ने बताए, परंतु तीन पुरुषार्थ कैसे हैं, गौण है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है, अर्थात हमारे ये चार हमारे जीवन के अंग है, चतुरांग, समझ लेना।